आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एक्सपर्ट से। हमारे साथ मैम मिस अंशुल खरवंदा जी, एकेडमिक ऑफिसर, एकेडमिक डिपार्टमेंट एनआईएस से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू सो मच रूपा।
तो मैम जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और टॉपिक है जनरल एंट्री, से मैं चाहूंगी हम चर्चा को शुरू करें।
जी बिल्कुल। हेलो लर्नर्स, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम जर्नल के ऊपर करेंगे, जर्नल एंट्रीज। लर्नर्स, अगर आप अपनी सेकेंडरी बुक्स में देखेंगे तो ये आपका लेसन 6 है जो जर्नल एंट्रीज के नाम से आपको वहां पर दिखेगा। तो लर्नर्स, आप हम ये पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हम जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और इतने सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं कि उनको पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख पाए। इसलिए वो क्या करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कि किसी भी टाइम पे अगर वो जानना चाहें कि कितनी उनकी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, क्या उनको जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है उसको जो भी आंसर चाहते हैं, जो भी वो ट्रांजैक्शंस के हिसाब से एनालिसिस करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो हमने देखा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, हमने इससे पहले के भी डिस्कशंस में जाना है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं जिसमें कि हम उनको सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करते हैं। तो लर्नर्स, जब हम ये कहते हैं कि सिस्टमैटिक मैनर, तो ये भी जानना जरूरी है कि वो सिस्टमैटिक मैनर या वो सिस्टम है क्या। तो जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो जैसा कि हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में भी जान चुके हैं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, जिसपे हमारी जो अकाउंटिंग जो हम एंट्रीज करते हैं जिसके ऊपर वो बेस्ड होती हैं, और हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी जान चुके हैं जो ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो दो तरफ होता है। तो जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं या फिर जब हम कहते हैं लेन देन, तो नाम से ही आप देखते हैं कि लेना और देना, तो मतलब एक तरफ तो बेनिफिट लिया जा रहा है, रिसीविंग द बेनिफिट, और दूसरी तरफ बेनिफिट दिया जा रहा है, मतलब गिविंग द बेनिफिट। तो जब भी हम लेन देन की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो लर्नर्स ये अब तक आपको क्लियर हो चुका है कि उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक रिसीव करने का और एक उसको देने का, गिव करने का। तो अब लर्नर्स, आप भी ये जानना चाहेंगे, आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है, और ट्रांजैक्शंस जो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कैसे करते हैं। तो यही जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं में से एक बुक का नाम जर्नल है जिसके बारे में हम जानेंगे। और जर्नल जो है, ये बुक जो है हर बिजनेसमैन इसको बनाता है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो। और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम इस बुक में डेट वाइज हम उनकी एंट्री करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि की जरूरत पड़ने पर हम उनको देख सकें या वहां से हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। सो लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि जर्नल का क्या मतलब है, जर्नल बनाने का क्या पर्पस है और क्या मेथड होता है जर्नल को बनाने का। सो लर्नर्स, जो प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले लर्नर्स, जर्नल क्या है उसका मतलब जानना जरूरी है। तो जर्नल है क्या? जर्नल, जब भी हम बात करते हैं कि जर्नल, तो जर्नल एक बुक है। आमतौर में भी भाषा में जब हम जर्नल की बात करते हैं तो वो एक बुक या एक मैगजीन को हम रेफर करते हैं। तो जर्नल जो है एक बुक ऑफ अकाउंट है अकाउंटिंग में, जिसमें हम जो अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो ये हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब कि जो इवेंट पहले होगा उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि अगर हमारी परचेजेस हम कर रहे हैं, हमने एक तारीख को भी परचेज करी, फिर तीन तारीख को भी करी, पांच तारीख को दो बार करी, तो जो इवेंट पहले हो रहा है उसे हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पांच तारीख वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको पहले रिकॉर्ड कर देंगे और एक तारीख वाले को बाद में करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डर है उनका ऑक्रेंस का, उसके हिसाब से ही हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। सो लर्नर्स, जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम एंट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आप अक्सर सुनते हैं कि जर्नल क्या है, फिर हम उसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं, नीचे हम नरेशन लिखते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये टर्म्स यहाँ पे किस लिए यूज होते हैं अकाउंटिंग में पर्टिकुलरली, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसको हम एंट्रीज कहते हैं, और जिस बुक में हम इन ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। तो जर्नल जो है वो उसको बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और प्राइमरी एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बुक में हम फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और बाकी का जो अकाउंटिंग प्रोसेसेस होते हैं वो इसी के बेसिस पर होते हैं। मतलब पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर इसी के बेसिस पर लर्नर हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और जर्नलाइजिंग या फिर जब हम जो एक प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस जर्नल के अंदर हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं या फिर पासिंग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। तो लर्नर्स, जब भी हम इन एंट्रीज को पास करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम होता है कि हम जर्नल में उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल बनाने का बेसिस क्या है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि आप पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जर्नल के लिए भी आपके पास में बनाने के लिए बेसिस होना चाहिए। जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स या कुछ सपोर्टिंग वाउचर्स आपके पास में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आपने सेल करी है, आपने 5 लाख रुपए की इस मंथ में सेल करी है, तो आपके पास बिल्स होने चाहिए जो ये कहें कि आपने इतनी सेल करी है, या फिर अगर क्रेडिट सेल है तो उसके इनवॉइसेस होने चाहिए, और भी जो रिसीट्स हैं, जो बिल्स हैं, वो सब आपको जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड हैं वो सब आपको सेव करके रखने होते हैं। तो लर्नर्स, जब हम जर्नल एंट्रीज भी करते हैं तो इसके लिए भी बेसिस होता है कि हम किस बेस पे जर्नल एंट्रीज को पास कर रहे हैं। अगर आपके पास बिल्स, रिसीट्स, वाउचर्स या इनवॉइसेस नहीं है तो आपके पास में कोई बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आप दिखा सकें कि हाँ आपने इतना कैश जो है इसलिए निकाला है। तो ये सब जो लर्नर्स डॉक्यूमेंट्स हैं या वाउचर्स हैं ये एज एविडेंस सर्व करते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं। सो लर्नर्स, आप इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमने बात करी थी तो हमने उसमें ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती है अकाउंटिंग की और जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसके ऊपर भी हमने बात करी थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स में डिफ्रेंशिएट करता है अकाउंट्स को, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है, जो कि है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनमें जो है अकाउंटिंग को बायफोकेट किया गया या क्लासिफाई किया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, या फिर जिसको हम अपना मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद लर्नर्स, ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होती हैं वो जनरली हम देखते हैं तो वो एक ही जर्नल मेंटेन करती हैं जिसमें वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेती हैं। लेकिन लर्नर्स, जब बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बड़ा बिजनेस होगा तो वहां पे लेन देन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे। तो इतने जब ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं तो एक जर्नल में या एक बुक में उनको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन केसेस में जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो कि स्पेशल जर्नल हो सकते हैं, और जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स में, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, क्या वो क्रेडिट सेल्स हैं, या वो अगर वो क्रेडिट सेल्स हैं तो उनको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर वो क्रेडिट परचेजेस हैं तो उन्हें परचेजेस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर वो कैश में हैं तो उन्हें कैश ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो लर्नर्स, इसके बाद हमने ये जाना कि जर्नल का मतलब क्या होता है। इसके बाद आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जर्नल बनाने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल। सो पहली बात तो जो जर्नल है वो हमें एक डेट वाइज एक रिकॉर्ड देता है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं सभी ट्रांजैक्शंस का हमें डेट वाइज रिकॉर्ड देता है। उसके अलावा वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है ट्रांजैक्शन के बारे में एक ही जगह पर, और उस ट्रांजैक्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन भी देता है। अब एक्सप्लेनेशन किस तरह से देता है, जब अभी आगे हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री जर्नल डिस्कस करेंगे तो उसमें आप जानेंगे। उसके अलावा लर्नर्स, ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के, उसको अच्छे से समझने में भी हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम जर्नल को डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करते हैं। उसके अलावा जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी जर्नल प्रिपेयर्ड होता है तो जो लेजर पोस्टिंग है वो बहुत ही ईजी और हमारे लिए सरल हो जाती है। सो लर्नर, सबसे पहले जर्नल का जो फॉर्मेट है हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है जर्नल का। तो अगर आपके पास अपनी बुक्स भी हैं तो आप उसपे भी आपने देखा होगा और आप खोल भी सकते हैं, तो जो भी जर्नल होता है उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं कुछ। तो उसमें सबसे जो पहला कॉलम होता है वो डेट का कॉलम होता है, और डेट का कॉलम आप उतना ही बड़ा बनाएंगे जितना कि आपको लगता है उसमें आप डेट लिख लेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। अब पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप क्या लिखते हैं, जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है उसमें आप लिखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो इस जो भी ट्रांजैक्शन है उसको करने से इफेक्ट हुए हैं, और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये भी आप वहां पे लिखते हैं। जिस भी अकाउंट को आप डेबिट करते हैं उसे आप ऊपर लिखते हैं, और फिर नीचे उसके जो है नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी जगह छोड़कर टू जो भी अकाउंट है, मतलब अगर वो कैपिटल अकाउंट है तो आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और उसको आप क्रेडिट करते हैं, ये लिखने का तरीका है उसका। और जो डेबिट उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो LF हम वहां पे लिखते हैं, या फिर लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है। तो इस कॉलम का से मतलब ये है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि जो जर्नल है उस वो लेजर में किस पेज पे पोस्ट किया गया है, क्योंकि लेजर भी एक बहुत मोटी सी बुक होती है, अगर हम एक एंट्री को ढूंढने के लिए पूरा पेजेस पलटते रहेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जर्नल में ही उस एंट्री का लेजर फोलियो लिख दिया जाता है, मतलब कि उसका लेजर पे जो पेज नंबर है वो लिख दिया जाता है। तो एक ही टाइम पे आप जब चाहें आप उसको पेजेस पलट के आप उसे वहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा लर्नर्स, नीचे जो है नरेशन लिख दिया जाता है। नरेशन जो है जर्नल एंट्री का एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि बहुत शॉर्ट होता है, ब्रीफ और कंप्लीट होता है, जिससे आपको एक बार में पता चल जाता है कि इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है दूसरी एंट्री करने से पहले, ताकि कि डिस्टिंक्शन रहे कि पहली और दूसरी एंट्री में पहली एंट्री जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद लर्नर, जब मैं डेट की बात आपको बता रही थी तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस तो हम यहां पर मंथ लिखते हैं और अकाउंटिंग ईयर लिखते हैं। ईयर जो है एक ही बार लिखा जाता है जो हम ऊपर लिख देते हैं, और मंथ भी जो है हम एक ही बार सब ट्रांजैक्शंस के लिए ऊपर लिख देते हैं, और उसके बाद हम जो है नीचे डेट्स लिखते रहते हैं जो भी उस मंथ की डेट्स हैं। जैसे अगर जनवरी 1 है तो मे बी हमने ऊपर 2020 लिख दिया और उसके बाद जनवरी लिख दिया, उसके नीचे जनवरी में जिस दिन भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मतलब 4 जनवरी को हुआ है, 7 जनवरी को हुआ है, 15th को हुआ है, तो ऐसे करके हम उसके नीचे एंट्रीज करते जाते हैं। उसके अलावा लर्नर्स जो डेबिट अमाउंट, फिर जो दो कॉलम और होते हैं लेजर फोलियो के बाद, एक होता है डेबिट अमाउंट का और दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट का, तो ये कॉलम्स भी हमारे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हम उतनी ही जगह रखते हैं जिसमें हम अमाउंट लिख पाएंगे। तो डेबिट जो हमने एंट्री करी है उसका जो अमाउंट होता है वो डेबिट कॉलम में उसके सामने जाता है, और जो हमने एंट्री क्रेडिट करी है उसका जो अमाउंट होता है, जो भी हमने अकाउंट क्रेडिट किया है उसका जो अमाउंट होता है वो हम उसके ही सामने क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। सो लर्नर्स, जब एक पेज आपका ओवर होता है, क्योंकि जर्नल अगर आप देखेंगे, जर्नल बुक जो होती है या जिसमें जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, अगर आप वो बुक देखेंगे किसी भी बिजनेस हाउस में तो आप देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ी सी बुक होती है, और उसमें जब एक पेज में आप पूरी एंट्रीज कर लेते हैं तो सबसे नीचे जो है वहां पे आप दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करके वहां पे उस पेज पे लिखते हैं, और वहां पे फिर आप उसमें कैरिड फॉरवर्ड लिख देते हैं, और मतलब ये होता है कि ये जो टोटल है ये दूसरे पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना है, और इसी टोटल को, जो पहले पेज का टोटल है, इसको आप नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं, और नेक्स्ट पेज पे लर्नर्स आप उसको ब्रॉट फॉरवर्ड वहां पे लिख देते हैं, और सेम टोटल आप वहां पे कॉपी कर देते हैं, क्योंकि फिर उस पेज पे जो भी एंट्रीज होंगी फिर उसमें टोटल होता जाएगा। तो ऐसे ही जो है मैन्युअली जर्नल प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद लर्नर्स, बहुत जरूरी है कि आपको, आप ये भी जाने कि जर्नलाइजिंग जब हम करते हैं, या फिर जिसको हम पासिंग द जर्नल एंट्रीज कहते हैं, जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं जर्नल को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो लर्नर्स, हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब कि अगर कोई भी हमें ट्रांजैक्शन दी गई है तो जो भी अफेक्टेड अकाउंट्स हैं उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड फॉर कैश, तो हम इसमें देखते हैं कि गुड्स जो है 5000 रुपीज के, उन्हें जो है बेचा गया है, कैश में बेचा गया है। तो अगर हम दो अकाउंट्स जो है जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई करें यहाँ पे, तो एक तो सेल्स हुई है, और क्योंकि सेल हमने की है तो हमारा कैश जो है इससे इफेक्ट होगा। तो जो दो इफेक्टेड अकाउंट्स हैं वो सेल अकाउंट और कैश अकाउंट होंगे। नेक्स्ट जो होता है लर्नर्स, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस कैटेगरी में जाएंगे। तो अगर हम सेल्स की बात करें, तो क्योंकि जो हमने हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो हमें पांच तरह के अकाउंट्स बताता है कि एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, इनकम है और एक्सपेंसेस हैं। तो हम ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो ये हमारा है। तो जब हम कैश की बात करते हैं तो जो दो हमने अकाउंट्स रिकॉग्नाइज किए हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई किए हैं, वो सेल अकाउंट है और कैश अकाउंट है। लेकिन लर्नर्स, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल जो है एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, और जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश जो है वो एक असेट अकाउंट है, और ये हम ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लर्नर्स, हम इसमें रूल्स लगाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो असेट्स हैं वो जब भी बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, और जब भी वो कम होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे हमें देखना है कि जो हमारा कैश है वो हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो जब हम गुड्स की सेल करेंगे तो हमारे पास में पैसा आएगा, तो हमारा कैश जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स जो है एक रेवेन्यू अकाउंट है, और रेवेन्यू भी हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, सेल हमारी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जब हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए यहां हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। तो इसलिए लर्नर्स, जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, डेट के कॉलम में हम डेट डालेंगे सबसे पहले, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम जर्नल एंट्री लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट के कॉलम में हम डेबिट में 5000 रुपीज लिखेंगे कैश के सामने, और सेल्स के सामने हम क्रेडिट कॉलम में 5000 रुपीज लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो क्योंकि हमारे जो गुड्स हैं वो हमने बेचे हैं और वो गुड्स हमने कैश में बेचे हैं। सो लर्नर्स, ये एक प्रोसेस होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे।
शिक्षार्थियों श्रोताओं यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप बने रहिए और सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 MHz। शिक्षार्थियों श्रोताओं, जैसा कि हम अपनी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में और हमारा टॉपिक है जनरल एंट्रीज, और हमें जानकारी दे रही है हमारी एक्सपर्ट मिस अंशुल खरवंदा जी, एकेडमिक ऑफिसर एकेडमिक डिपार्टमेंट NIOS से। तो मैम, मैं चाहूंगी एक बार फिर चर्चा को शुरू कीजिए प्लीज।
जी बिल्कुल। सो लर्नर्स, हम बात कर रहे थे कि जर्नल एंट्रीज क्या है, जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल क्यों बनाया जाता है, क्यों उसको बनाना इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस क्या है जर्नलाइजिंग का या जर्नल एंट्रीज को पास करने का, इस पे भी हमने डिस्कशन किया। सो लर्नर्स, अब जो है हम एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन को यूज करके। सो लर्नर्स, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम देख रहे हैं January 1 की एंट्री है और उस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है, अमोघ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और विद 50,000 रुपीज। सो सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे। तो January 1 को हम जो है, जो ट्रांजैक्शन है हमारा, वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर या फिर अमोघ। तो जो भी कैश हमें ओनर जो है वो बिजनेस में लाता है, उस कैश को हम जो है कैपिटल कहते हैं। और लर्नर्स, जो वो कैश ला रहा है, जो अमाउंट वो कैपिटल ला रहा है, वो कैश के फॉर्म में ही ला रहा है, क्योंकि दूसरे तरीकों से भी कैपिटल लाया जा सकता है, वो किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं, एसेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं कि वो लाए, बट यहां पे वो कैश के फॉर्म में ला रहा है। तो जो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं, दो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं, वो कैश अकाउंट है और वो कैपिटल अकाउंट है। इसके बाद लर्नर्स, जो कैश अकाउंट है, जब बिजनेस हम कर रहे हैं, कैश वो लेके आया, तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। कैश जो है वो हमारा एसेट अकाउंट है और कैपिटल जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट, उसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी एक ब्रॉड हेड है। तो जो हमारा कैश है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, लेकिन जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो लर्नर्स, जो ये हमारा, इसमें हम देखेंगे कि हम कैश को जो है इसमें डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, और जो हमारा कैपिटल है उसे हम यहां पर क्रेडिट करेंगे। इसके बाद लर्नर्स, यहीं पे मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जो हमने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में अकाउंट्स को बांटा है या कैटेगराइज किया है, जो है एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड गेन्स। सो लर्नर्स, हम देखते हैं कि जो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, क्योंकि ये एक जो रूल है वो फॉलो करते हैं, और जो लाइबिलिटीज, कैपिटल्स और गेन्स हैं, इनको हम एक ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का रूल फॉलो करते हैं। तो अगर हम सिर्फ एसेट्स के लिए भी याद रखें तो बाकी सारा रूल हम याद रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो लाइबिलिटीज, कैपिटल और गेन्स का हमने ग्रुप बनाया है, वो एसेट और एक्सपेंसेस के ग्रुप के ऑपोजिट चलता है। सो लर्नर्स, जो हमारे एसेट्स हैं, जब भी वो इंक्रीज होंगे, तो उनको हम डेबिट करेंगे, और सेम एक्सपेंसेस के लिए भी फॉलो करता है, और जब भी एसेट्स हमारे कम होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से लर्नर्स जो हमारे लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज कैपिटल और गेन्स का ग्रुप है, वो उसको ऑपोजिट फॉलो करेगा। मतलब अगर उनमें इंक्रीज हुआ है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और अगर उनमें डिक्रीज हुआ है तो उसे डेबिट किया जाएगा। अगर आप इतनी सी चीज याद रख पाएंगे तो आप बहुत इजीली जो है, जो जर्नल एंट्रीज हैं, इसको आप कर पाएंगे, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, अफेक्टेड अकाउंट्स जान पाएंगे, उसके बाद काइंड ऑफ अकाउंट जान पाएंगे, उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसको एनालाइज करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और फाइनली आपकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लर्नर्स अगर हम लें तो वो है पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया गया और 20,000 रुपीज जो है वो पे किए गए। तो अगर हम यहाँ पे अफेक्टेड अकाउंट्स देखें कि कौन से दो अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट हुए हैं, तो एक तो बैंक अकाउंट है और दूसरा जो है वो कैश अकाउंट है। अब हम देखें तो दोनों ही एसेट हैं, कैश भी एसेट अकाउंट है और बैंक भी एसेट अकाउंट है। तो हम देख रहे हैं कि बैंक में तो हमें इंक्रीज हुआ है, तो एसेट में जब भी इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि हमने पैसा बैंक में जमा किया है तो बैंक अकाउंट तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा कैश है वो हमारा चला गया है, तो इसलिए कैश अकाउंट जो है वो हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको, उसमें इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जो हमारा कैश अकाउंट है उसमें डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। सो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसको देखें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो अब जो है हमने गुड्स परचेज किए हैं, और उसको हमने किस फॉर्म में परचेज किया है, उसको हमने कैश के फॉर्म में परचेज किया है। तो अगर हम अफेक्टेड अकाउंट्स देखें कि अफेक्टेड अकाउंट्स कौन से होंगे, परचेजेस अकाउंट होगा और कैश अकाउंट होगा। तो परचेजेस क्या है, वो जो है हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, और जो हमारा कैश है वो हमारा एसेट अकाउंट है। दोनों एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए एक ही रूल फॉलो करता है कि अगर उसमें इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गुड्स परचेज हुए हैं तो परचेज में तो इंक्रीज हुआ है, मतलब एक्सपेंस अकाउंट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। और जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने पास से कैश देंगे, क्योंकि गुड्स हमने कैश पे परचेज किए हैं, तो मतलब ये है कि हमारे पास से कैश कम होगा, और जब कैश कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लर्नर्स जो आपको जर्नल एंट्री मिलेगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद लर्नर्स जो नेक्स्ट एंट्री है उसको हम देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, मशीनरी परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। तो मशीनरी जो है उसे परचेज की गई, मशीनरी को परचेज किया गया और अमाउंट जो है वो चेक से पे किया गया। तो अगर हम दो अकाउंट्स देखें कौन से अफेक्टेड हुए हैं, तो वो मशीनरी अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट है। मशीनरी भी एक एसेट अकाउंट है और जो बैंक है वो भी एक एसेट अकाउंट है। तो जाहिर सी बात है जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास में इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें कमी हो रही है, बैंक से पैसा जा रहा है, इसलिए हम बैंक को डिक्रीज करेंगे। तो जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी लर्नर्स वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही एसेट अकाउंट हैं तो इंक्रीज मशीनरी में हुआ है इसलिए उसे हम डेबिट करेंगे, और कैश में बैंक में डिक्रीज हुआ है इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो लर्नर्स यहाँ पे जो अकाउंटिंग एंट्री आपको मिलेगी वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। उसके बाद लर्नर्स जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स टू प्रणय, प्रणय को गुड्स बेचे गए। तो गुड्स प्रणय को बेचे गए, जब भी कुछ नाम हमें दिया रहता है और ऐसा नहीं लिखा रहता है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो हमें ये अज्यूम करके चलना है कि गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेचे गए हैं। तो गुड्स जो है यहाँ पे क्रेडिट पे बेचे गए हैं, और तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो जो है डेटर का होगा जो कि यहां पर है प्रणय। तो जो दो इफेक्टेड अकाउंट्स अगर हम देखें कि कौन से होंगे, तो एक तो प्रणय का अकाउंट होगा और दूसरा जो है वो सेल्स का अकाउंट होगा। तो प्रणय जो है यहां पे डेटर है और जो सेल्स है यहां पर वो रेवेन्यू है। तो इसलिए डेटर्स में जब भी इंक्रीज होगा तो हम उसको जो है डेबिट करेंगे, और सेल्स में जब इंक्रीज होता है, ये सेल्स जो है वो रेवेन्यू है और रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डिक्रीज करते हैं। सो लर्नर्स, प्रणय का अकाउंट यहां पे डेबिट किया जाएगा और जो सेल्स अकाउंट है वो यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे सो इट विल बी लाइक प्रणय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद लर्नर्स, जो नेक्स्ट एंट्री हम डिस्कस करेंगे वो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट है 8,000 रुपीज। सो लर्नर्स, यहां पे अगर हम देखें तो जो गुड्स हैं उनको कैश में सेल किया गया है। तो जो अगर हम अफेक्टेड अकाउंट्स की बात करें कि कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, तो एक तो कैश अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट है। और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह के अकाउंट है, क्या टाइप, कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है। तो अगर हम कैश की बात करते हैं तो कैश जो है वो एक असेट अकाउंट है और सेल जो है वो एक रेवेन्यू अकाउंट है। असेट में जब भी इंक्रीज होता है तो उसे जो है हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो लर्नर्स, यहां पे जो जर्नल एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी, क्योंकि कैश जो यहां पे एसेट है उसमें इंक्रीज हुआ है, उसे डेबिट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारा सेल्स में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेल्स क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट है और रेवेन्यू का हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी उसमें इंक्रीज हो तो उसे हमें क्रेडिट करना है, इसलिए हम सेल को यहां पर क्रेडिट करेंगे। सो लर्नर्स, आपने देखा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से जो है हम जो अकाउंट जो हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो भी जर्नल एंट्री हम पास कर रहे थे, जो भी हम जर्नलाइजिंग कर रहे थे, उसमें एक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। लेकिन लर्नर्स, कुछ जो है वो कंपाउंड एंट्रीज भी होती हैं। तो कुछ कंपाउंड एंट्रीज जाननी जरूरी होती है कि कौन सी कंपाउंड एंट्रीज हैं। तो कंपाउंड एंट्रीज वो होती हैं जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होता है। तो इस तरह की जो एंट्री होती है, टोटल सेम रहेगा, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल सेम रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो जो है ज्यादा हो जाती हैं। किस तरह से, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि कैश पे किया गया रेंट के लिए और सैलरी के लिए, तो दोनों चीज के लिए कैश पे किया गया, रेंट के लिए भी 2000 पे किया गया और सैलरी के लिए भी पे किया गया। तो लर्नर्स, जब आप रेंट पे कर रहे हैं, आपने 2000 रेंट पे किया, तो रेंट जो है उसको आप डेबिट करेंगे और सैलरी अकाउंट है उसको भी आप डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये दोनों ही एक्सपेंस अकाउंट हैं और जब भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है तो इसको आप डेबिट करते हैं। तो जो रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसको हम डेबिट करेंगे और इसके बदले में हमारा क्या गया है, हमारे पास से कैश गया है। तो जब भी कैश जाता है तो कैश हमारा एसेट अकाउंट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश में हम टोटल 6000 रखेंगे, मतलब कि जो हमारी जर्नल एंट्री अब होगी उसमें हम रेंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 2000 से, सैलरी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 4000 से और टू कैश लिखेंगे 6000 रुपीज। मतलब कि बीइंग कैश पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, हमने जो है कैश को पे किया एज रेंट एंड सैलरी। सो लर्नर्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से कंपाउंड जर्नल एंट्रीज जो है वो हम पास करते हैं। इसके साथ साथ लर्नर्स, जो नेक्स्ट है वो हमें ये जानना है कि जर्नल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जैसा कि हमने बात करी कि जर्नल एक बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर पाएं, और खासकर अगर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है जो जर्नल है उसको डिवाइड किया जाए और जर्नल्स में, सब्सिडरी बुक्स में या फिर स्पेशल जर्नल बुक और जर्नल प्रॉपर में। तो कुछ जो है सब्सिडरी बुक्स हैं जो जर्नल्स हैं जो यूज किए जाते हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कैश बुक है, जैसे कि हमने कहा कि हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जर्नल को, एक तो स्पेशल जर्नल और एक जर्नल प्रॉपर। जो स्पेशल जर्नल है जिसको हम स्पेशल जर्नल कह रहे हैं उसको हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैश जर्नल और गुड्स जर्नल। तो कैश जर्नल जो है वो हमारा सिंपल कैश बुक भी हो सकती है, बैंक कॉलम कैश बुक भी हो सकती है और पिटी कैश बुक भी हो सकती है। तो लर्नर्स जब हम आगे कैश बुक पे डिस्कशन करेंगे तो हम डिटेल्ड में इन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लर्नर्स अगर हम गुड्स जर्नल की बात करें तो गुड्स जो है उनको हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो जो गुड्स जर्नल है उसमें परचेज बुक हो सकती है, सेल्स बुक हो सकती है। परचेज अगर हमने कुछ किए हैं उनको हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक हो सकती है। सेल्स हमने कुछ किए, सेल को हम रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जर्नल्स के जो कि हो सकते हैं। इसके बाद लर्नर्स कुछ हम एंट्रीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जांपल्स कि वो कौन कौन सी कुछ एग्जांपल्स अगर हम करेंगे तो उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो लर्नर्स इसमें अगर आप देखें तो गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज किए गए हैं, गुड्स को हमने उधार पे खरीदा है। तो एक बात आपने और भी देखी होगी कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं लेकिन हम गुड्स अकाउंट नहीं मेंशन कर रहे हैं, उसकी जगह हम परचेज या फिर सेल अकाउंट मेंशन कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो भी हम गुड्स होते हैं या तो हमारे पास वो परचेज के फॉर्म में रहते हैं या वो सेल के फॉर्म में होते हैं या फिर वो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के फॉर्म में होते हैं। तो हम इनको इन्हीं तरीकों से इन्हीं नामों से रिकॉर्ड करते हैं ताकि कि अगर ईयर एंड में जब हम अपना प्रॉफिट या टोटल परचेजेस या टोटल सेल्स कैलकुलेट करें तो वो इजीली हम कर पाएं। तो इसलिए हम इनको इन हेड्स में बायफोकेट करते हैं। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो परचेज अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और जो हमारा सप्लायर है उसको जो है हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद लर्नर्स जो हम अगर गुड्स की सेल करते हैं क्रेडिट पे तो सेल्स हमने पहले भी जाना है कि जब भी हमारी सेल होती है क्योंकि सेल हमारे लिए रेवेन्यू है तो जब भी हमारी सेल होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा और उसको हम क्रेडिट करते हैं। जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहां पर सेल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्योंकि सेल्स जो है वो कैश पे नहीं हुई है इसलिए हम कैश को यहां पर डेबिट नहीं कर सकते हैं। सेल्स हमारी उधार सेल है, क्रेडिट पे हमने सेल किया है इसलिए हम यहां पे जो कस्टमर है उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो लर्नर्स जो हमारी यहां पर जर्नल एंट्री बनती है वो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है। उसके बाद लर्नर्स अगर कैश परचेज हुई है असेट्स की तो आप देखेंगे कि जो असेट्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने असेट्स को परचेज किया है, असेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो दो अगर हम इफेक्टेड अकाउंट्स देखें तो एक तो असेट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। और अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो हम देख रहे हैं कि असेट्स और जो कैश है दोनों ही एसेट टाइप ऑफ अकाउंट है। तो लेकिन एसेट्स यहां पे बढ़ रहे हैं तो हम उनको डेबिट करेंगे और जो हमारा कैश है वो कम हो रहा है क्योंकि जब भी हम परचेज करेंगे हम पैसा दे के परचेज करेंगे, कैश हमारे पास से कम होगा। तो इसलिए जो हमारी एंट्री बनेगी वो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। उसके बाद लर्नर्स बिजनेस जो है वो कैपिटल, एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैपिटल से, तो जब हम बिजनेस को नए बिजनेस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैपिटल भी आएगा और कैश भी आएगा। कैश जो है वो एक एसेट अकाउंट है और कैश बढ़ेगा तो वो उसमें हम उसको डेबिट करेंगे। लेकिन कैपिटल के लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं वो एसेट के ऑपोजिट होता है, इसलिए कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जो यहाँ जर्नल एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। सो लर्नर्स ये कुछ एंट्रीज थी जिनको थ्रू एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और अगर आप अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे या फिर पेन और पेंसिल लेकर बैठेंगे और साथ में नोट करते जाएंगे अपनी बुक्स में तो शायद आपको बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। सो लर्नर्स, आज के डिस्कशन में हमने जाना कि जर्नल क्या है, जर्नल का मतलब क्या है, जर्नल को बनाने का क्या फायदा है, उसका परफॉर्मा क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं जर्नल के, कंपाउंड एंट्रीज किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं और उनको हम कैसे पास करते हैं, इस सब के बारे में हमने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा।